Blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Nittaviyattakammam. Viramnamiyunapattasauvattam. Anubhagasavihattim. Jaho vai samparu vema. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम 36 पृष्ठ पर आ गए हैं, 36। यहाँ जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल एक जीव की अपेक्षा हम देख रहे हैं। योग मार्गणा की अभी बात चलेगी यहाँ पर, मार्गणाओं में देख रहे थे हम, तो यहाँ पढ़ते हैं 49 नंबर का जो पॉइंट है, योग की अपेक्षा, योग मार्गणा की अपेक्षा, अलग अलग योगों में बताएंगे। अभी यहाँ जघन्य का प्रकरण चल रहा है, सामान्य से यानी योग, योग नहीं, ओघ की अपेक्षा। जघन्य का काल एक समय, क्यों, वो दसवें गुणस्थान के अंत में होता है। नहीं, ओघ में हम देख रहे हैं, योग में नहीं, योग की बात अभी देखेंगे। तो यहाँ योग की अपेक्षा पांचों मनोयोग और पांचों वचन योगों में मौनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि दसवें गुणस्थान के अंत में तीनों ही योगों में से कोई भी योग होगा, परंतु यहाँ बात मनोयोग वचन योग की चल रही है।
ये हमने ऊपर का विशेषार्थ नहीं किया था ना?
मैंने तो नीचे डेट लिखी, फिर पढ़ते हैं। देखो ऊपर का विशेषार्थ पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी आदि चार कायों के भेद प्रभेदों में जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्ववत एकेंद्रियों के समान घटित कर लेना चाहिए। एकेंद्रियों में वो जघन्य होगा, क्योंकि उनमें तो ये सूक्ष्म सांप्रदाय वाला जघन्य नहीं होगा, उनकी मार्गणा का जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक में या उनमें से आए हुए जीवों को लेना, सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त। अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, अपनी अपनी यानी जिस जिस काय की बात चल रही है उसकी अपनी लेना। जघन्य काल तो क्षुद्र भव है और उत्कृष्ट अपनी अपनी हरेक की, असंख्यात लोग जिनमें जघन्य काल कुछ कम कहा है, उनमें जघन्य अनुभाग के काल को दृष्टि में रखकर कहा है, यानी अजघन्य का जघन्य काल कुछ कम कहा, तो शुरू में जघन्य था, बाद में अजघन्य हुआ, अर्थात जघन्य अनुभाग वाला उनमें जन्म लेकर यदि अनुभाग को बढ़ा ले तो अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण होता है। इसी प्रकार वनस्पति कायिक में जानना चाहिए। त्रस और त्रस पर्याप्त, ये हमने देखा था ना, उनमें तो क्षपक पॉसिबल है, तो उनमें क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है, इसलिए वहां तो एक समय ही घटित होगा। तथा अजघन्य अनुभाग का त्रसों में अजघन्य अनुभाग, जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति, त्रस की जघन्य स्थिति एक लब्धि अपर्याप्त, त्रस में सूक्ष्म नहीं लेना है, हाँ त्रस में तो वो तो जघन्य एक समय हो गया, हाँ अभी अजघन्य की बात चल रही है। अजघन्य में त्रस की छोटी में छोटी स्थिति शूद्र भव, और उसमें से वो जघन्य वाला काल माइनस कर देना, और लंबी स्थिति सामान्य त्रस में साधिक 2000 सागर, और पर्याप्त त्रसों में 2000 सागर। अब यहाँ हम योग की बात पढ़ रहे हैं, तो मनोयोग और वचन योगों में दसवां गुण स्थान है, इसलिए उसमें भी जघन्य का काल एक समय होगा। ये अभी हमने पढ़ी थी, एक लाइन सेकंड लाइन में पढ़ते अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जघन्य काल एक अजघन्य का जघन्य काल,
जघन्य से अजघन्य हुआ और योग का
जघन्य से अजघन्य होता नहीं है।
अच्छा, ये योग में आया एक समय के लिए अजघन्य रहा और मरण हो गया। मनोयोग वचन योग की बात है ना?
हाँ, मनोयोग में आया है अजघन्य के साथ
एक समय रहा।
हाँ, एक समय रहा और मरण हुआ तो योग पलट गया। ख्याल में आती बस? हाँ, हम तभी ओग की बात कर रहे थे,
जघन्य
हम इन जनरल बात कर रहे थे। ये स्टार्टिंग में हमने रिवीजन के तौर पर हम ओग में जघन्य कहाँ होता है तो सूक्ष्म सांप्राय में होता है, क्षपक के, इसलिए वहां कोई मरण की बात है नहीं है, और योग में तो घटित होगा। और अजघन्य का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में योग ही पलटेगा, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। का योगियों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि का योगियों में भी ये क्षपक सूक्ष्म सांप्राय होता है, इसलिए वहां एक समय घटित होगा। और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जैसे अजघन्य के साथ काय योग शुरू हुआ है, और एक समय में अभी काय योग में कैसा पलटाना, ऐसा ले सकते हैं ना हम, यानी वहां पर भी ऊपर भी ले सकते थे कि दसवें गुणस्थान के दो समय बाकी है, तो अजघन्य था उस समय का योग शुरू हुआ, एक समय के लिए अजघन्य रहा, दूसरे समय में जघन्य हुआ, वहां ऐसा भी ले सकते हैं। ख्याल में आई?
का योग शुरू हुआ,
जघन्य कब होता है? दसवें के अंतिम समय में,
उसके पहले
तो उसके उपांत समय में क्या कहेंगे उसको? अजघन्य कहेंगे। तो जब उपांत समय शुरू हुआ तब वो अन्य योग में से पलटकर का योग में आया, अन्य दो योगों में भी ये बात घटित होगी, मनोयोग वचन योग का योग में, तो वहां तो एक समय घटित होगा। या अजघन्य में अगर घटित करना है क्योंकि मरता है तो भी काय योग तो चालू ही रहता है ना, इसलिए मरण की अपेक्षा कर लेते ना, काय योग में आया एक समय मरा, जैसे मनोयोग में हमने घटित किया वैसे काय योग का काय योग ही रहेगा। नहीं समझे?
नहीं, वो तो बराबर है, कर्मण काय योग
है। हाँ, कोई भी काय योग ही रहेगा, औदारिक हो, वैकरिक हो, कोई मिश्र हो, कोई भी हो, तो काय योग का काय योग ही रहेगा।
काय योग में व्याघात नहीं होता है ना?
काय योग में व्याघात होगा तो क्या होगा, वो मनोयोग वचन योग में व्याघात होके काय योग में आता है, परंतु काय योग का व्याघात होके मनोयोग में नहीं जाता है। देखेंगे आगे वो कुछ विशेषार्थ में कुछ बात आती है तो देखेंगे, अभी तो हम यहाँ पढ़ते हैं। देखो, मरण की अपेक्षा घटित नहीं होगा इसमें, औदारिक काल योग
में नहीं होगा।
काल योग में मरण की अपेक्षा एक समय घटित नहीं होगा, क्योंकि जो व्याघात होता है ना, तो मनोयोग वचन योग का व्याघात व्याघात होना है ने? योग शुरू हुआ, अब उसमें कोई वो योग खत्म होके वो अन्य योग शुरू होता है, तो काय योग में आता है नियम से, परंतु काय योग का व्याघात नहीं होता। उसमें तो मरण की अपेक्षा ही जो कुछ बात होती है, परंतु मरकर भी काय योग का काय योग ही रहता है, क्योंकि कहीं जाता है तो भले वो तीनों योग हो बचने इंद्रियों को, तो भी उसके वचन योग कब शुरू होगा? पर्याप्त होने पर, हाँ, भाषा पर्याप्ति के बाद मनोयोग, मन पर्याप्ति के बाद।
ये सभी पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात ही मनोयोग और वचन योग चालू होगा ना?
हाँ, मनोयोग
और
मन पर्याप्ति पूरी होने पर होगी
इमीडिएटली।
हाँ, इमीडिएटली यानी अभी यथा योग्य। अभी उसका योग कभी शुरू होगा? पलटता रहता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर काय योग तो चालू हो गया।
नहीं, भाषा पर्याप्ति पूरी होने तक तो औदारिक मिश्र काय योग ही देखा है।
नहीं, शरीर मिश्र काय योग,
अच्छा,
शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक है, फिर औदारिक काय योग चालू हो जाएगा। औदारिक या जो कोई यथा योग्य, वैकृत भी हो सकता है। देखो, हम काय योगी की बात पढ़ रहे थे तीसरी लाइन में। काय योगियों में मौनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये तो उपांत समय में ही घटित होगा सूक्ष्म सांप्राय के, अन्यथा घटित नहीं होगा, मरण की अपेक्षा घटित नहीं होगा इसमें। और उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। देखो, यहाँ कौन सा काल योग लिया है? काय योग, औदारिक काय योग नहीं कहा, क्योंकि औदारिक काय योग कहते तो बीच बीच में औदारिक मिश्र आ जाता।
तो कलम ने जो असंख्यात लोग देखा था कि वहाँ पे जो हमने देखा था कि अजगने के लिए उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग प्रमाणी है, मैंने पूछा था भी कि पूर्व में और अंत में उसका जघन्य हो जाएगा, वो एक इंद्रिय की अपेक्षा देखा था।
हाँ, तो
यहाँ पे ये अनंत काल बताया है।
यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है? काय योगी में जघन्य किसको कहेंगे? एक इंद्रियों को कहेंगे क्या नहीं कहेंगे?
नहीं,
हमने काय योग लिया तो काय योग तो दसवें गुणस्थान में भी है।
अच्छा, एक इंद्रियों
तो दसवें गुणस्थान में जो अनुभाग है और एक इंद्रियों के जो अनुभाग है उसमें जघन्य तो दसवें गुणस्थान वाला है, तो उसको तो हमने जघन्य में बता दिया। अजघन्य उसके अलावा बाकी सभी अजघन्य है, जितने जीव है सब, यानी भले वो ग्यारहवें गुणस्थान का भी क्यों ना हो, तो सबको हम अजघन्य कहेंगे। अनादि से अजघन्य चला आ रहा है। तो अभी अपना प्रकरण है काय योगियों का, काय योग रहना चाहिए। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण एक इंद्रिय का जो काल है उसमें तो औदारिक मिश्र होगा, औदारिक काय योग होगा, कभी कारमाण काय योग होगा, इनमें से पलटते रहेंगे, फिर भी काय योग है वहां पर। तो इतने काल तक तो अजघन्य के साथ रहा काय योग, इतने काल तक रहा काय योग का जो उत्कृष्ट काल है वो यहाँ बताया। ख्याल में थी ना बस? हाँ, अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है ये काय योग का उत्कृष्ट काल, ये काय योगियों में अजघन्य का उत्कृष्ट काल बताया। अब औदारिक काय योगी, अभी मात्र काय योग नहीं कहा, औदारिक काय योग। अब औदारिक काय योगियों में जघन्य किसके होगा?
तो सूक्ष्म
सांप्राय, वही सूक्ष्म सांप्राय, ख्याल में। और फिर अजघन्य तो कंटिन्यूअस औदारिक काय रहना चाहिए, औदारिक काय योग कंटिन्यूअस रहना चाहिए। किस में रहेगा ज्यादा?
पृथ्वी का संख्या तो
नहीं, एक इंद्रियों में रहेगा, एक इंद्रियों में रहेगा, तो लंबे काल तक जो एक इंद्रिय में रहता है उसको लेना है। औदारिक काय योग रहना चाहिए,
मिश्र भी नहीं होना चाहिए।
हाँ, मिश्र भी नहीं होना चाहिए, औदारिक मिश्र भी बीच में नहीं चाहिए।
तो एक संख्या,
क्योंकि कोई भी एक जीव एक भव पूरा होता है तो नियम से बिना कारमान योग का भी अगर जाएगा तो भी औदारिक मिश्र तो होगा ही स्टार्टिंग में, जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं होती है
कुछ कम 21 से ज्यादा।
हाँ, तो इसमें एक भव लेना है। तो ये जो एकेंद्रियों में बड़ा भव किसका है, तो वो खर पृथ्वी का एक हमने देखा था 22,000 वर्ष, उसमें से उसके लिए भी पहला औदारिक मिश्र का माइनस करना उसमें से काल, इसे कुछ कम 22,000 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं औदारिक काय योगियों में मौन कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये तो सूक्ष्म सांप्राय में, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। अब औदारिक मिश्र का योगियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब औदारिक मिश्र में जघन्य किसके होगा, अब यहाँ तो सूक्ष्म सांप्राय नहीं ले सकते,
सूक्ष्म अपर्याप्त जीव,
अभी हम एक इंद्रिय को जो लेना ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त
जीव से जो आया है,
सूक्ष्म सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त लेना है, क्योंकि अपर्याप्त के तो औदारिक मिश्र ही होता है, परंतु जघन्य काल लेना है ना हमको, तो जघन्य के साथ औदारिक मिश्र में वो आया है अभी अभी, पहले जघन्य था तो जघन्य अंतर्मूर्त रहता है, तो वो अंतर्मूर्त समाप्त होने के एक समय पहले वो इसमें आ गया है, औदारिक मिश्र में आया, कारमान का योग में से आ सकता है, अन्य औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र में, बीच में कारमान का योग लेना। फिर से जघन्य कौन करता है, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, उसके कौन सा का योग होता है,
वो तो औदारिक मिश्र का
कारमान मिश्र ही होता है, जिसने सूक्ष्म किया है जघन्य किया है उसके मिश्र का योग है। अब वो मरकर औदारिक मिश्र में आया, यदि रुजुगति से आता है तो औदारिक मिश्र था औदारिक मिश्र रहा, तो वो नहीं चलेगा, तो बीच में उसको कारमान का योग कराना, एक समय कराओ दो समय कराओ कुछ भी, कारमान का योग में से औदारिक मिश्र में आया और एक समय में उसका जघन्य से अजघन्य हुआ, ऐसा ही जीव ले सकते। बीच में अगर कारमान का योग नहीं लेंगे तो पहले भी औदारिक मिश्र था और अब भी औदारिक मिश्र है, दोबारा देखो ये जघन्य कौन करता है, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्त करता है, जिसने जघन्य किया है उसका कौन सा का योग चल रहा है, मिश्र औदारिक मिश्र, क्यों, क्योंकि वो कभी पर्याप्त होता ही नहीं है, इसलिए उसके औदारिक काय योग होने का सवाल ही नहीं है, उसने जघन्य किया और वो फिर अन्य भव में गया, एकेंद्रिय में भी गया, अभी एकेंद्रिय में जाओ या कहीं भी जाओ पंचेंद्रिय तक कहीं भी जाओ, तो पंचेंद्रिय तक कहीं जाएगा तो फिर उसका औदारिक मिश्र ही यदि रहता है, बीच में कारमान यदि नहीं आता है, तो हम वो जघन्य का जो पहले से शुरू था काल उसका काल गिनेंगे, हमें एक समय घटित करना है, बीच में कारमान का योग लेंगे, उसके बाद औदारिक मिश्र शुरू हुआ, एक समय के लिए जघन्य रहा फिर अजघन्य हुआ, इसलिए एक समय घटित होगा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि औदारिक मिश्र का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, तथा ये जघन्य की बात हुई, अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जैसे हमने जघन्य का घटित किया वैसे अजघन्य का घटित करें। वैक्रिय काय योगियों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये याद है वैकृत काय योगियों में किसके होता है, आप प्रतिभात है, हाँ नारकी और देव में ही होगा, परंतु किस जीव के होगा?
दो बार श्रेणी चक्र,
हाँ
दो बार श्रेणी चक्र के साइन
करते हैं। अभी यहाँ नारकी में अलग लेना, वो देवों में सौधर्म से लेकर हमने सर्वार सिद्धि तक के जघन्य देखा था, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के जो क्षपणा करके आया है दर्शन मुख की, उसके जघन्य होगा वैक्रिक का योग में। और वैक्रिक मिश्र में अगर पूछते हैं तो आप कहते हैं वैसे नारकी में भी होगा, देव में भी। किसके होगा? असंगी में से आया हुआ जीव लेना। तो यहाँ देखते देखो, वैक्रिय कायोगियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो कायोगी पलट जाएगा, मनोयोग वचन योग होगा, इसलिए अंतर्मूर्त कहा। अगर देवों की अपेक्षा कहना है तो जघन्य के साथ ले आया है तो जघन्य ही रहेगा पूरे लाइफ टाइम तक। यह अपना क्राइटेरिया योग का है, और वो भी वैक्रिय योग का। ख्याल में आती बात? यदि देवों में हम कहते कि जघन्य का उत्कृष्ट काल कितना है, तो जिस स्वर्ग में जन्मा है जघन्य के साथ, तो वहां की जो उत्कृष्ट आयु है उतने काल तक वो जघन्य ही रहेगा। और जघन्य के साथ आता है और वहां अन्य कोई क्रिया नहीं करता, तो ये जघन्य तो नहीं हो सकता जितना जघन्य वो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के और क्षपणा करके आया है। इतना जघन्य देवों में जाने के बाद तो कोई करेगा नहीं, तो अजघन्य वाला अजघन्य रहेगा, जघन्य वाला जघन्य रहेगा। परंतु यहाँ अपना क्राइटेरिया है वैक्रिय कायोग के।
तो यहाँ पे एक समय कैसे घटित होगा?
देखो देखो, नहीं वैक्रिय कायोगी में देखो, वैक्रिय कायोगी में जघन्य अनुभाग, अभी जो कोई जघन्य से आया है जघन्य का जघन्य थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा। अब आयु के अंत में मनोयोग या वचन योग से वैक्रिय कायोग में आया, जघन्य के साथ एक समय रहा और मरण हुआ, तभी होगा ये। नहीं तो ऐसे तो अंतर्मूर्त रहेगा उसका। जब जब योग पलटता है तो अंतर्मूर्त तक वो जघन्य का जघन्य ही रहेगा, उसने वहां जाके जघन्य नहीं किया है। हाँ, योग पलटने के कारण वैक्रिक कायोग में आया है और एक समय में मरा, तो एक समय उसका जघन्य के साथ वैक्रिक कायोग में घटित हुआ, बाद में उसके औदारिक मिश्र शुरू हो जाएगा, मनुष्य में आ जाएगा वो। नहीं समझे? कंटिन्यूस नहीं, तीन योग में से अंतर्मूर्त में पलटे, मनोयोग वचन योग, बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई संगी पंचेंद्रिय है उसके तीन योग तो पलटते ही रहते हैं, कोई भी योग अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, श्रेणी में भी पलटते हैं। जो पलटना रुकता है बारहवें में तो वो भी अंतर्मूर्त ही है, एक किसी योग में वो अगर बारहवें में है वहां भी एक अंतर्मूर्त ही है। तो कोई भी योग का काल एक अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट एकेंद्रियों में का योग रहता है, क्योंकि उनके वचन योग है ही नहीं। द्विंद्रियों में अगर लेना है तो वचन योग और कायोग पलटता रहता है, तीन इंद्रिय है तो मनोयोग वचन योग कायोग, इनका पलटना तो चलता ही रहता है, इसलिए वैक्रिक कायोग भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। ख्याल है? तथा अभी वैक्रिक कायोग में अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अजघन्य में भी ऐसा ही लेना है, अजघन्य के साथ देव में है या नारकी में है, और फिर वो उस योग में आता है और एक समय में मरता है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि किसी योग का काल अंतर्मूर्त होता है। वैक्रिक मिश्र का योगियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यहां एक समय कैसे लेना, क्योंकि आयु के अंत में तो वैक्रिक मिश्र नहीं होता ना। हाँ बोलो।
जो असंगी जो आया है
अभी, असंगी में से आया है और एक समय के बाद उसने अजगण्य का बंध कर दिया। उसको लेना यहाँ वैकृत मिश्र में। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त में तो वो अजगण्य करेगा ही। अभी वैकृत मिश्र में अजगण्य अनुभाग विभक्ति का जगण्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो अजगण्य के साथ आया है तो वैकृत मिश्र में तो अंतर्मूर्त बिताएगा ही, उसके बिना उसका वैकृत का युग होगा ही नहीं, वहां तो एक समय घटित नहीं हो सकता। वैकृत का योग में हमने अजगण्य का भी जगण्य का भी एक समय घटित किया था, वो मरण के पूर्व एक समय उस योग में आया हुआ जीव लिया था। कार्मण का योगियों में मौनीय कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय। अभी कार्मण का योगियों में जगन्य किसके होगा? हाँ प्रेरणा बेन, कार्मण का योग है वो क्षपक का तो वहां घटित नहीं होगा, विग्रह गति में। कौन सा, कहां से लाना उसको विग्रह गति में? हाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में जिसने जगन्य किया था अनुभाग, वो मर कर अन्य किसी भी पर्याय में जा रहा हो, भले पंचेंद्रिय में जा रहा हो एकेंद्रिय में जाओ कहीं भी, तो उसके जगन्य का जगन्य ही रहेगा। हो सकता है एक समय के लिए रहे और अधिक से अधिक
तीन समय।
हाँ तो समुत्पत्तिक वाले ने ही तीन समय घटाया है ना उसने। नहीं ना, हाँ जो आपने जो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ा है और उतरा है तो उसका अनुभाग है वो तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ तो एक इंद्रिय के योग्य उसने किया है। इसलिए वो क्षपणा करके देवों में जाने वाला उसको नहीं लेना कारमाण में। देखो हमने देखा ना वैकृत का योग की अपेक्षा वैकृत मिश्र में जगन्य असंगी की अपेक्षा से वाहन लिया था, यानी असंगी में जितना है उससे भी उसका ज्यादा है दो बार क्षपणा वगैरह करने वाले का। तो कार्मण का योगी में अभी हमने देखा उसको पढ़ेंगे, मौनीय कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय, क्योंकि एक समय में वो जगन्य का अजगन्य हुआ। और उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसी प्रकार अजगण्य का भी है, क्योंकि कारमाण का योग में रहते हुए कोई जगन्य नहीं करेगा अजगण्य, परंतु ऐसा हो सकता है अजगण्य के साथ आया है और कारमाण का योग में से वो मिश्र का योग हो गया उसका, जो कोई हो औदारिक मिश्र हो या वैकृत मिश्र हो। इसी प्रकार अजगण्य का भी है आहारक का योगियों में मौनीय कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय। क्यों? हाँ मयंग भाई आपको याद है? याद ये नहीं, हमके तो सोचना है बस, याद कुछ करना ही नहीं इसमें। हाँ चार चीजें साथ नहीं होती उसकी बात नहीं है, यहाँ एक समय कैसा होगा वो बता रहे। हाँ बोलो। हाँ पूछ रही क्या बता रही है? मरण की अपेक्षा। क्यों? वहां भी जब आहारक शरीर बनाते हैं ना तो उसमें भी मनोयोग वचन योग काय योग उनका पलटना होगा। अंत में काय योग में आया और मरण हुआ एक समय में, ऐसा मरण आहारक मिश्र में नहीं होगा, वहां एक समय घटित नहीं होगा। तो इनके लिए जगन्य कौन सा लेना है? अभी ऐसा करना, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है, क्षपणा की क्षायिक समय दृष्टि है, अब उसके बाद उसने आहारक का शरीर बनाया, आहारक का युग में आया है, तो आहारक का युग में उसके जगन्य होगा।
क्या इसे भी ले सकते हैं ना, मनोयोग वचन योग में से का योग हुआ एक समय के लिए आहारक का योग का और दूसरे समय में औदारिक का योग?
लास्ट में उसका यानी योग पलट कर वो मूल शरीर में आया, उसका योग पलटा वहाँ वैसे ले सकते, परंतु वो मरण के उसमें मरण ही आया ना, मरण हुआ इसीलिए योग पलटा है।
आहारक का योग हुआ एक समय के लिए और औदारिक का योग चालू हो गया शरीर।
अच्छा, मूल शरीर में आया ऐसे हो सकता है। हाँ। देखो आहारक में जघन्य काल एक समय, हम यहाँ मरण की अपेक्षा लिखेंगे, लिखेंगे नहीं समझेंगे, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि वो आहारक का योग का काल अंतर्मूर्त है। जघन्य के साथ आया है वो जघन्य ही रहेगा, अजघन्य के साथ आया है वो अजघन्य ही रहेगा, तो अजघन्य में भी एक समय घटित होगा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ तो एक समय घटित हुआ, आहारक मिश्र का योगियों में मुनि कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्यों ऐसा? मरण नहीं है
और योग का पलटना भी नहीं होता है।
हाँ, योग का पलटना भी औदारिक सॉरी आहारक मिश्र ही चल रहा है, अंतर्मूर्त तो आहारक मिश्र ही रहेगा, बाद में आहारक का योग हो जाएगा। विशेषार्थ, अब ये योगों की बात विशेषार्थ में समझा रहे हैं। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी और औदारिक काय योगी जीवों के क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान संभव है। ये कौन कौन से योग लिए? जो दसवें गुणस्थान में हो सकते ऐसे यहाँ योग लिए, इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। काय योगी इन जनरल कहेंगे तो भी वही औदारिक ही काय योग होता है, तो जो औदारिक काय योग वाला है वो काय योगी है ही है, परंतु सभी काय योगी औदारिक काय योगी नहीं हो गए। तथा पांचों मनोयोग और पांचों वचन योगों का मरण और व्याघात की अपेक्षा, उस योग में आया और मरण हुआ तो योग पलट गया, व्याघात होना यानी इंटरप्शन होना, उसके ब्रेक हो जाना उस योग का पलट कर, व्याघात यानी कोई उसमें जैसे कहते बाधा आनी आघात होना कुछ, तो वो योग पलट कर काय योग में आ जाता है। तो व्याघात की अपेक्षा भी एक समय होगा और औदारिक काय योग का मरण की अपेक्षा एक समय काल होता है। औदारिक काय योग कहा, अकेला काय योग नहीं कहा, काय योग में मरण की अपेक्षा काय योग ही रहेगा, इसलिए औदारिक काय योग पलट कर औदारिक मिश्र हो सकता है, कारमान काय योग हो सकता है, वैकृत मिश्र हो सकता है, तो मरण की अपेक्षा एक समय काल होता है, इसलिए इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय कहा है। जो दसवें क्षपक गुणस्थान में जघन्य अनुभाग को प्राप्त करने के एक समय पूर्व काय योगी होता है, देखो देखो यही बात आई ना जो मुझे लगती थी, एक समय पहले काय योगी हुआ उसके अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय देखा जाता है, यानी दो निषेक बाकी है और वो मनोयोग या वचन योग में से काय योग में आया औदारिक काय योग, परंतु औदारिक काय योग का एक समय तो हमने अन्यथा भी घटित किया था यहाँ पर, अजघन्य में घटित किया था, एक समय मरण की अपेक्षा भी हुआ था, और यहाँ जो है केवल काय योग लेते हैं तो मरण की अपेक्षा काय योग में एक समय घटित नहीं होता, इसलिए दसवें गुणस्थान में योगों का पलटना होता है, वचन योग या मनोयोग में से वो काय योग में आया, औदारिक काय योग ही है वहां पर, तो उसका उपांत समय था तो अजघन्य अनुभाग था, और अंतिम समय में आया तो जघन्य हुआ, काय योग वही चालू रहा। अतः वह उक्त प्रमाण कहा है, सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रियों के जिस प्रकार काल घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार औदारिक मिश्र काय योग में घटित कर लेना चाहिए। वैक्रिय काय योग और आहारक काय योग का जघन्य काल एक समय होने से उस योग में रहने का ही जघन्य काल एक समय है। इनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय कहा है। ये मरण की अपेक्षा दोनों में घटित होता है। और जघन्य काल एक समय तथा इन दोनों योगों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से इनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। जो वैक्रिक मिश्र का योगी प्रथम समय में जघन्य अनुभाग के साथ रहता है और दूसरे समय में जो बढ़ा लेता है, ये हमने असंगी में से आया हुआ जीव देखा था, उसके जघन्य अनुभाग का एक समय काल उपलब्ध होने से वह एक समय कहा है। इसमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वैकिरिक मिश्र का ही काल अंतर्मूर्त है। साथ ही जो असंगी मरकर वैकिरिक मिश्र का योगी होता है, उसी के जघन्य अनुभाग होता है, देखा ना, उसी के, अन्य के नहीं। इसलिए अजघन्य अनुभाग का भी जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। यानी अन्य कोई ऐसा नहीं कि अजघन्य का वो एक समय घटित हो सके, पहले अजघन्य था बाद में जघन्य हो गया, ऐसा उसमें नहीं हो सकता। तो जो अजघन्य के साथ आया है तो अंतर्मूर्त तक रहेगा उसमें। आहार मिश्र का योग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से यह वैकिरिक मिश्र में ऐसा भी हम घटित कर सकते हैं। वैकिरिक मिश्र का अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त काल है। अब कोई जघन्य के साथ उसमें आया है तो उसका अपना अंतर्मूर्त तक तो जघन्य रहा, बाद में अजघन्य हुआ, तो वो जो रिमेनिंग है वो अजघन्य का जघन्य काल है और अजघन्य का उत्कृष्ट काल अजघन्य के साथ ही वैकिरिक मिश्र में आया है और पूरा अंतर्मूर्त जो उसका अपना अंतर्मूर्त है उतने काल तक अजघन्य रहा। इसलिए जघन्य काल भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त। आहारक मिश्र का योग जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से इसमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। आहारक मिश्र में मरण नहीं होता। अब किसी जीव ने आहारक शुरू किया तो शुरू में शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक आहारक मिश्र का योग है, उसका अंतर्मूर्त तो रहेगा ही। जघन्य अनुभाग के साथ आया हुआ जघन्य के साथ ही रहेगा, अजघन्य के साथ आया हुआ अजघन्य ही रहेगा। आहारक शरीर के जो कायोग हो, कोई मनोयोग वचन सब कुछ है, उस काल में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया का अर्थ क्या, वहाँ कोई विषय योजना या क्षपणा का कार्य नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर अनुभाग का घटना नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। जघन्य के साथ आया हुआ जघन्य रहेगा, अजघन्य के साथ आया हुआ अजघन्य रहेगा, तो दोनों के लिए वहाँ अंतर्मूर्त बताया। कार्मण कायोग का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय होने से इसमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय। यहाँ भी जो जघन्य के साथ आया है वो जघन्य रहेगा, अजघन्य के साथ आया है वो अजघन्य रहेगा। यहाँ जिन योगों में अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल घटित नहीं किया है वह उन योगों के वह उन योगों के उत्कृष्ट काल प्रमाण जानना चाहिए। जहाँ जो जिस योग का उत्कृष्ट काल है, मनोयोग वचन योग में तो हमने एक एक अंतर्मूर्त देखा है, और काय योग में जहाँ जो पौशलेकेंद्रीय वाला कोई यहाँ प्रकरण होगा तो उसमें वो कायोग भी हम कायोग तो लंबा चलेगा असंख्यात पुद्गल परावर्तन, परंतु औदारिक कायोग लेना है तो कुछ कम 22,000 वर्ष। अब वेद की अपेक्षा, स्त्री वेदियों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये कब होगा? सूक्ष्म सांप्राय में सवेदी है क्या अपगत वेदी है?
नहीं, स्त्री वेद के उदय के साथ लास्ट समय।
हाँ, तो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय तो नहीं होगा?
नहीं, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में ही होगा ना।
कैसे होगा
वाला ना?
वहाँ अपगत वेदी कहेंगे उसको, स्त्री वेदी थोड़ा ही कहेंगे
उसको। स्त्री वेद के उदय के साथ लास्ट समय है,
स्त्री वेद का उदय के साथ लास्ट समय है, वहाँ स्त्री वेदियों में जघन्य कहेंगे, परंतु वो सूक्ष्म सांप्राय वाला वहाँ नहीं होगा। आप दोनों को गलत कर रहे हैं।
नहीं, ये अनिवृत्ति कर रहे हैं,
अनिवृत्ति का अंतिम समय, अंतिम भी नहीं,
स्त्री वेद के उदय का
लास्ट। सवेद भाग है ना, तो पहला भाग है, उसमें भी पहले मैं क्या कहना चाहती है, सवेद भाग कभी है, नवे गुणस्थान का पहला भाग। अब यहाँ स्त्री वेदी कब तक कहेंगे? जब तक वेद का उदय है। तो स्त्री वेद का जो अंतिम समय है उसमें मौनी का अनुभाग जघन्य होगा ना। सभी स्त्री वेदियों को कंपेयर करना, स्त्री वेदी कौन कौन से गतियों में होते हैं? हाँ, नरक को छोड़कर, मनुष्य, तीरंच और देव, देविया। हाँ, इसमें मनुष्य, इन सभी जीवों में, स्त्री वेदी सभी जीवों में जघन्य अनुभाग कब होगा? तो स्त्री वेद का जो अंतिम समय है उदय वाला, वहां पर होगा। इसलिए उसका समय एक कहेंगे। देखो, स्त्री वेद की अपेक्षा स्त्री वेदियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और वो भी क्षपक में लेंगे हम, क्योंकि उसमें क्षपणा वाला है स्त्री वेदी, उसकी विशुद्धि ज्यादा है तो उसका अनुभाग भी कम होगा। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय।
ये एक समय कैसे होगा?
अब जो उपशम श्रेणी वाला स्त्री वेदी का अंतिम समय है वो अजघन्य होगा,
के लिए अजघन्य हुआ, मरण हो गया। और पुरुष वेद ने कहा
है? नहीं नहीं, वो स्त्री वेद के अंतिम समय वहाँ भी ले सकते हैं ना।
नहीं, अजघन्य की बात है, वहाँ पे तो स्त्री वेद तो स्त्री वेदी रहेगा, जो श्रेणी चढ़ेगा सपक श्रेणी, तो उसको एक समय वहाँ पे गठित नहीं होगा। ये श्रेणी में से अपगत वेदी में से स्त्री वेद में वापस आया एक समय के
स्त्री वेदी में,
और मरण हो
गया, मरण
हुआ, वेद हो गया। अजगन्य तो स्त्री वेद का तो मिनिमम तो काल, तो
स्त्री वेद का, स्त्री वेद नाम की प्रकृति की बात नहीं चल रही,
स्त्री वेद का उदय,
स्त्री वेद के उदय के साथ मोनिय की अजगन्य चाहिए।
तो वो श्रेणी में से
उतरा हुआ पहले समय में लेना,
और
दूसरे समय में मरण हुआ। देखो, स्त्री वेदी में ये हो गया, अजगन्य का एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पृथक पल्योपम है, ये स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल। ये तीनों गतियों में भटकेगा, स्त्री वेद में रहेगा, ये उसका उत्कृष्ट काल है। पुरुष वेदियों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये पुरुष वेद के अंतिम समय में लेना। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त,
ये तो पुरुष वेद के साथ छोटे में छोटी आयु
अजघन्य है,
पुरुष वेद के साथ छोटे में छोटे कम से कम आयु लिया।
हाँ, पुरुष वेद के साथ छोटी में छोटी आयु लेने, कोई भी पर्याप्त जीव है ना, पर्याप्त जीवों में तो पुरुष वेद हो सकता है, अपर्याप्तों में तो नपुंसक वेद होता है। तो पर्याप्त की जघन्य आयु कितनी है?
अंतर्मूर्त।
तो जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य है। अब ये श्रेणी की बात यहाँ नहीं सोचना,
पुरुष
वो तो सारा ही। तो अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। लक्ष्मी बहन को नहीं पढ़ना, देखो किसको श्रेणी में से उतरा है वो मरकर देवों में जाएगा, पुरुष वेदी रहेगा। वहां तो स्त्री वेदी पलट कर पुरुष वेदी हुआ था, इसलिए वह उपशम श्रेणी से उतर कर एक समय में मरा है, ऐसा लिया। देखो फिर पहले पेज पर स्त्री वेदियों में अजघन्य का जघन्य का एक समय लिया था, यानी वो स्त्री वेद सहित उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है। और एक समय में मर गया, यानी सवेद होने पर एक समय में मरा। सवेद उतरा ना अपगत वेद में से स्त्री वेदी हुआ, एक समय में मरण हुआ तो पुरुष वेद में चला गया। अब पुरुष वेदियों में यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? उसको अगर हम ऐसा ही लेते हैं, श्रेणी चढ़ के उतरा है, पुरुष वेदी हुआ है और एक समय में मरा है, तो ऐसा जीव कहाँ जाएगा मरकर? देव में। और देव में कौन होगा? वो पुरुष ही होगा। तो उसका पुरुष वेद का पुरुष वेद ही कायम रहा ना, तो उसमें कैसे घटित होगा? इसलिए पुरुष वेद में जो अजघन्य का जघन्य काल घटित करना था वो अंतर्मूर्त, यानी ये छोटी में छोटी आयु पर्याप्त जीवों की। पर्याप्त क्यों लेना? क्योंकि पुरुष वेदी पर्याप्तों में होगी, अपर्याप्तों में नहीं होगी। लब्धि अपर्याप्तों को में तो नपुसक वेदी ही होते हैं, यानी ये पुरुष वेद के साथ जघन्य आयु अंतर्मूर्त की होगी। तो अंतर्मूर्त के बाद यानी अन्य वेद में से, पहले ऐसा लेना अन्य कोई वेदी था, नपुंसक वेदी या स्त्री वेदी था, पुरुष वेद के साथ छोटी में छोटी आयु बिताई अंतर्मूर्त की, और मरकर अन्य वेद वाला हो गया, तब अंतर्मूर्त के लिए पुरुष वेद के साथ अजघन्य रहा, यानी उसके पहले भी और बाद में भी अन्य वेद में उसको ले जाना। नपुसक वेदियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। नपुसक वेदी में जघन्य का कैसे होगा? जैसे हमने स्त्री वेदी में जघन्य देखा था, नपुसक वेद के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के उसका जो वेद का उदय है उसका अंतिम समय लेना। तो उसका जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक ही समय है। अब अजघन्य का घटित करेंगे, अजघन्य का जघन्य काल एक समय, ये भी नपुसक वेद के उदय के सहित उपशम श्रेणी चढ़ने वाला अपगत वेदी होकर फिर दोबारा ग्यारहवें में से दसवें में फिर नौवें में और सवेद भाग में आया, नपुसक वेद के साथ एक समय रहा और मरण होकर वो देवों में पुरुष वेदी हो गया। यानी ये तो स्त्री वेद जैसे ही लेना। और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। किसका? अजघन्य। जघन्य कब होता है? वो नवे गुण स्थान में होता है। उसके अलावा जो सब नपुसक वेदियों में है वो सारा अजघन्य है। तो वो कितना काल कहेंगे? अनंत काल। उत्कृष्ट काल अनंत काल है। वह अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है, क्योंकि सादी शांत काल लेना है ना यहाँ पर। असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्यों? क्योंकि वो अन्य पंचेंद्रिय में तो आएगा, और फिर वहाँ आने पर उसके तो पुरुष वेद स्त्री वेद वगैरह हो जाएगा, इसलिए इसका इतना ही काल होगा। असंख्यात पुद्गल परावर्तन अपगत वेदियों में, ये अपगत वेदी की बात अब आई। मौनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अपगत वेदियों में जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म सांप्रदाय दसवें के अंत समय में, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय।
ये शपक का लेने का या उपसर्ग श्रेणी
किस में?
अजघन्य का।
हाँ आप बताओ, अपगत वेदी में अजघन्य कहाँ होगा?
अजघन्य दोनों जगह होगा।
हाँ, दोनों
भी होगा।
शपक में कैसे होगा?
वो जघन्य नहीं है, एक समय के लिए जो जघन्य हुआ उसके पहले अजघन्य है।
उसके पहले वो अपगत वेदी था के सवेदी था?
नहीं अपगत वेदी तो वो तो जो
तो जघन्य काल एक समय कैसे हुआ?
नहीं नहीं जघन्य का जो एक समय है,
देखो यहाँ किसकी बात चल रही, अपगत वेदियों में मौनीय कर्म की और जघन्य अनुभाग विभक्ति।
वो शपक में भी होगा ना?
शपक में कैसा होगा वही मैं आपको पूछ रही हूँ।
जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ चढ़ता है या पुरुष वेद के साथ चढ़ता है वो सूक्ष्म संप्राय के पहले
नौवे गुणस्थान में अपगत वेदी हुआ, उसके बाद दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग पांचवा भाग बीत गए और फिर वो सूक्ष्म संप्राय में आया, उसका भी अंतर्मूर्त बीत गया और अंत समय में जाके जघन्य किया।
तो ये अंतर्मूर्त
तो उसका अंतर्मूर्त तक अजघन्य रहा एक समय कैसे रहा?
नहीं नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ कि शपक श्रेणी का अंतर्मूर्त लेने का या उपशम श्रेणी का अंतर्मूर्त, क्योंकि उपशम श्रेणी में भी नौवे गुणस्थान में अपगत वेदी हो जाएगा तो दसवा ग्यारह।
आप उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, मैं जघन्य की बात कर रही
हूँ।
अजघन्य का जघन्य काल कैसे होगा आप जरा सोचना, बाकी लोग ये तो फटके बता देते हैं ना। हाँ क्या कहा? देखो हम पढ़ रहे थे अपगत वेदियों में मौनीय के ये जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय है, वो तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय। और उत्कृष्ट काल भी मौनीय की सत्ता वाले अपगत वेदी का भी बात है ना, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से, यहाँ सत्ता की बात चल रहे हैं। एक मिनट, ऊपर मैं पढ़ रही थी, मैं कहाँ गई? नीचे मैं विशेषार्थ में चली गई। मैं ऊपर का चौथी लाइन में पढ़ना चाहती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। अपगत वेदियों में मौनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये तो दसवें गुणस्थान में। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अभी हम जघन्य की बात करेंगे, ये जघन्य कैसे होगा? हाँ अजघन्य का जघन्य काल ग्यारहवें में मर गया, परंतु ग्यारहवें में मरा तो नौवा दसवा ग्यारहवा तीन अंतर्मूर्त तक तो वो अजघन्य रहा, हमें एक समय तक अजघन्य रखना है। सोचो
अब तो पास
हाँ नहीं, वो तो क्षपक श्रेणी में, वो एक समय भी वहां नहीं घटित होगा। क्यों? क्योंकि वो अपगत वेद बहुत पहले हुआ है और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान अंतर्मूर्त के बाद आए। हाँ देखो, नौवे गुणस्थान में दूसरे समय नहीं लेना, नौवे गुणस्थान में पहले सवेदी था, अपगत वेदी होने पर एक समय के लिए अजघन्य रहा और दूसरे समय में मर गया, तब लेना। फिर से अभी सवेदी था, कोई भी वेद सही चल रहा था, उपशम श्रेणी चल रहा था, तो उपशम श्रेणी में तो अजघन्य ही होता है, जघन्य तो होता नहीं है। जो दसवें में होता है अंतिम समय में वैसा तो कहीं भी नहीं होगा। तो वो सवेद भाग में से अपगत वेद में आ गया तो उसका अजघन्य का अजघन्य ही रहा और फिर मर गया। मर गया तो क्या होगा? देवों में पुरुष वेदी हुआ यानी सवेदी हुआ, तो अपगत वेद के साथ कितने समय तक रहा? एक समय तक, और जितना रहा उतना अजघन्य के साथ रहा। नवे के सवेद भाग में से अपगत वेदी हुआ, एक समय तक रहा और मर गया, तो उसका एक समय घटित होगा अजघन्य का। उपशम श्रेणी में ही होता है मरण,
नहीं नहीं आपने बराबर
ग्यारहवे में होगा अगर लेते हैं परंतु वहां हो अगर मरण कराएंगे तो अपगत वेद का काल कितना बीत गया
नहीं उनको ऐसा लगा अपगत वेद ही ग्यारहवे गुणस्थान में होता है
अच्छा पर मरण नहीं हो सकता ऐसा लगा आपको हाँ मरण आठवें के पहले भाग में नहीं होता चढ़ते समय बाद में मरण होता है और आठवें में उतरते समय में होता है चढ़ते समय में नहीं होता है आठवें में तो उतरते समय पहले समय में भी हो सकता है हाँ देखो अब यहाँ फिर आगे पढ़ते हैं उत्कृष्ट अंतर्मूर्त जो उत्कृष्ट जो अंतर्मूर्त है उसके लिए आपका प्रश्न था ना अपगत वेदी होने पर
ये शपथ का ही लेना पड़ेगा
हाँ अजगण्य जो है वो तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अभी हम उपशम श्रेणी का उत्कृष्ट घटित करेंगे और शपथ श्रेणी का भी उत्कृष्ट घटित करेंगे उपशम श्रेणी की अपेक्षा अपगत वेद का काल कैसे घटित करेंगे
नौवे के दूसरे भाग से
हाँ नौवे का दूसरा भाग से लेकर पूरी श्रेणी चढ़ा ग्यारहवे में से फिर दूसरे भाग तक आया फिर सवेदी हो गया ये जो काल है और क्षपक श्रेणी में
नौवे के
दूसरे के भाग से भाग के बाद सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक तो ये क्षपक का काल बड़ा कैसे होगा
नहीं वो छोटा होगा
छोटा होगा केवल चढ़कर उतरना ये नहीं लेना जहाँ विशुद्धि ज्यादा वहाँ काल कम
हाँ तो मैं वही अपेक्षा पूछ रहा था कि शपक का काल हमने आधा देखा था
हाँ।
उपशम श्रेणी से
तो उपशम श्रेणी का काल बड़ा होगा
पर उपशम श्रेणी में नब्बे दसवे ग्यारहवे अच्छा वापस दसवे
नौ दस ग्यारह फिर दस और नौ अभी विशेषार्थ इसका पढ़ेंगे तीनों वेदों में मोह का जघन्य अनुभाग अपने अपने सवेद भाग के अंतिम समय में होता है जिस वेद के सहित चल रहा है उस वेद के अंतिम समय में अतः इनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहा स्त्री वेद और नपुसक वेद का जघन्य काल एक समय ये जघन्य काल एक समय उस वेद का ही जघन्य काल एक समय अपगत वेद होने के बाद सवेदी हुआ और मरा उपशम श्रेणी में घटित होगा उपशम श्रेणी में उतर कर मरने वाला उतर कर सवेद हुआ और मरा एक समय में और पुरुष वेद का जघन्य काल अंतर्मूर्त अब यहां श्रेणी में अंतर्मूर्त लेना कि नहीं लेना नहीं घटित होगा क्यों वहां मर गया तो भी पुरुष वेदी ही होगा इसलिए पुरुष वेद में जो जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा वो कोई एक पर्याप्त छोटे में छोटा भव लेना यानी वो पंचेंद्रिय का एक जघन्य भव होगा ना पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव लेना है पंचेंद्रिय पर्याप्त कहा मैं असंगी में भी हो सकता है पुरुष वेद
हाँ
असंख्यों में भी पुरुष वेद श्री वेद नपुसक वेद तीनों वेद होते हैं और पुरुष वेद तो तीनों ही गतियों में पाए जाएंगे देवों में तो इतना अंतर्मूर्त वाला भव होगा नहीं तो पुरुष वेद का काल जघन्य अंतर्मूर्त कहते हैं तो इसको ये ऐसा मत समझना कि अंतर्मूर्त में वेद पलट जाता है जैसे कषाय का और योग का होता है वैसा नहीं समझना जो योग है वो जन्म से मरण तक वही योग रहता है तो हम वेद वही रहता है तो हमें तो ऐसा लेना है ये छोटा में छोटा पर्याप्त का भव लेना है अन्य वेद में से इसमें आया फिर इसमें से मरकर अन्य वेद में चला गया तभी अंतर्मूर्त घटित होगा मैंने पंचेंद्रिय का ये पंचेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य यानी छोटे छोटे में छोटा भव पर्याप्त का जघन्य उसकी भव स्थिति इसलिए इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल उक्त प्रमाण कहा तथा इनमें अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण होता है, यह स्पष्ट है। तो अपनी अपनी काय स्थिति में हमने क्या देखा, स्त्री वेद की अपनी काय स्थिति कितनी देखी, सौ पृथक पल्य, पल्य सौ पल्य पृथक्व, कहा सौ पृथक्व पल्य को एक ही बात है। नपुसक वेद की अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, और फिर पुरुष वेद का
सौ पृथक सागर,
सौ पृथक सागर। अपगत वेद में सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होने से इसमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। मोह की सत्ता वाले अपगत वेदी का जघन्य काल एक समय है, मोह की सत्ता वाले अपगत वेदी का जघन्य काल एक समय, ये उपशम श्रेणी में अपगत वेदी होकर मरा, मरण की अपेक्षा। और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से इसमें जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है, इस पर तो अभी अभी हमने चर्चा की थी। अब कषाय मार्गणा में देख रहे हैं, कषाय की अपेक्षा क्रोध कषाय वालों में किसमें, देखो मोह की सत्ता वाला अपगत वेदी का जघन्य काल, तो देखो मोहनी की जघन्य किसके होगी, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, उस टाइम उसकी वेदों की क्या पोजीशन है, तो अपगत वेदी है। तो जघन्य अनुभाग विभक्ति अपगत वेदियों में किसके होगी, अपगत वेदियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति किसके होगी, तो दसवें गुणस्थान के अंतिम समय, वो पार्ट हो गया अभी, वो बात बता दी। अब यहाँ अपगत वेदियों का काल बता रहे, पहले में पहले ही वो देखेंगे, अपगत वेद होने पर उसका काल देखना है। अपगत वेदी का काल अगर हमको देखना है तो नौवे केवल में अपगत वेदी कहे, अभी हम मोह की सत्ता वाली बात छोड़ दीजिए, तो अपगत वेदी का काल कितना होगा उनको बताने दो। हाँ, किसी जीव में उत्कृष्ट काल पहले देखते हैं, अपगत वेदी का उत्कृष्ट काल कितना होगा,
मौनी की सत्ता वाला ना,
अनंत काल, हम बिना सत्ता वाले की बात के, नौवे गुणस्थान में अपगत वेदी हुआ, दसवा ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा सिद्ध भगवान सभी अपगत वेदी हैं, अनंत काल तक रहेंगे। अब हमको मौनी की सत्ता वाला अपगत वेदी चाहिए, तो जब तक मौनी की सत्ता कब तक है, तो दसवें के अंत तक है क्षपक में, और उपशम श्रेणी में मौनी की सत्ता कब तक है, तो सत्ता ही सत्ता है उसकी, तो अपगत वेद होकर नौवा दसवा ग्यारहवा फिर ग्यारहवें में से दसवा फिर नौवा, वो अपगत वेदी का मौनी की सत्ता वाला जीव है, क्षपक में भी अंतर्मूर्त तक रहता है मौनी की सत्ता के साथ, और उपशम श्रेणी में भी अपगत वेदी मोहिनी की सत्ता के साथ अंतर्मूर्त रहता है, दोनों जगह बता देना। अब यहाँ क्या कहते हैं, मोह की सत्ता वाले अपगत वेदी का जघन्य काल एक समय, क्योंकि उपशम श्रेणी में अपगत वेद होकर एक समय में मरा, तो जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से, ये उपशम श्रेणी में ही चढ़ के उतरा है, उसकी अपेक्षा हम यहाँ समझेंगे। अगर हम क्षपक में भी कितना काल है अपगत वेदी के मोहनी की सत्ता वाला और जघन्य अनुभाग, वहां भी हम अंतर्मूर्त कहेंगे, क्योंकि अपगत वेदी हुआ है फिर नौवे के चार भाग बिताए रिमेनिंग, फिर दसवा का उपांत समय तक आया है, तब तक उसका भी अजघन्य है, इसलिए उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। बात कहे अब कषाय मार्गणा में, क्रोध कषाय वालों में, क्रोध कषाय कहां से कहां तक है और उसका काल कितना है, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है, ये एक बात, और उसका एक कषाय का काल कितना है, ये दो प्रश्न है। बोलो अभी, बहुत अच्छा, पहले गुणस्थान से लेकर नौवे के दूसरे भाग तक और काल उसका अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता है। अब यहाँ पढ़ेंगे, अभी हम कषाय की अपेक्षा क्रोध कषाय वालों में मोहनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि इसका जो जघन्य अनुभाग, जैसे हमने वेद में देखा, वेद के उदय के अंतिम समय में जघन्य होता है, अब उसके भी आगे बढ़ा है ना, वेद का उदय समाप्त हुआ, फिर वो क्रोध का उदय चला अंतर्मूर्त तक, तो उसके अंतिम समय तक उसका उदय हो या लोभ माया मान किसी का हो, क्रोध तो सत्ता में पड़ा है तो उसको क्रोध कषाय, परंतु क्रोध कषाय वाला कब तक कहेंगे, जब उदय है तब कहेंगे। उस उदय वाले के अंतिम समय में सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग मिनिमम है, क्योंकि पहले गुणस्थान से तो थे कभी कभी कषाय वाले, कोई भी कषाय चल रहा था परंतु उसका अनुभाग ज्यादा था, अब इस पोजीशन पर आने पर क्षपक वाले ने उसका अनुभाग जघन्य कर दिया है। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये जो जघन्य नहीं है वो सारा अजघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
यह अजघन्य का एक समय तो श्रेणी में से उतर वाले उतरने वाले जीव का लेने या क्रोध,
अजघन्य उषम श्रेणी में से उतर कर
उदय हुआ और एक समय में मर गया, देव में गया और
यानी अन्य गति में अन्य कषाय का उदय शुरू होगा तो ले सकेंगे, जैसे देवों में लोभ का उदय होता है पहले तो वहां ले सकते हैं उसको। हाँ,
कषाय का उदय एक समय के लिए नहीं हो सकता है
ना? नहीं, कषाय का उदय एक समय के लिए अन्यथा नहीं होगा, वहाँ भी व्याघात की अपेक्षा क्रोध में आता है, अन्य कषाय का व्याघात हो के जैसे हमने औदारिक काय योग में आता है, कहाँ हाँ योग काय योग में आता है, वैसे वहाँ भी देखो क्या कहा, जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि किसी कषाय का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार मान माया और लोभ में भी जानना चाहिए।
अब किस होगा
लोभ में, लोभ में जघन्य अंतिम समय में दसवें गुणस्थान के।
अच्छा, जघन्य का बात नहीं, वो जघन्य का एक समय कैसे होगा,
किसमें
लोभ का जघन्य का एक समय? अच्छा, वहाँ पे व्याघात लेना,
लोभ का अजघन्य का एक समय अन्य कषाय में,
ये तो देव में उत्पन्न होता है तो वहाँ पे हमने लोभ का उदय देखा।
हाँ,
वो अपेक्षा वहाँ पे एक समय,
ये अन्यत्र लेना ना, सारे अजघन्य ही है ना।
नहीं, पर लोभ का उदय होगा तो अंतर्मूर्त तक तो होगा ही। अभी ये जो श्रेणी में से उतरता है लोभ का उदय चालू हो गया
नहीं, तो श्रेणी में, श्रेणी में ऐसा लेना ना, लोभ में से मान माया में आया और वहाँ उसका
नहीं, पर वो तो अंतर्मूर्त होगा,
अंतर्मूर्त होगा, व्याघात की अपेक्षा ही लेना है उसको। तो आगे देखेंगे क्या लिखते हैं, कषायों का ही जघन्य काल एक समय कहते हैं कि कषाय पलट जाती है कभी कभी अन्य।
अच्छा, ये तो श्रेणी में जो लोभ का उदय चालू हुआ और एक समय में मरण हो गया,
मरण हुआ तो लोभ में से लोभ में रह सकता है ना,
वो तो देव में जाएगा तो लोभ का ही रहेगा,
वो अजघन्य है ना, वो श्रेणी की बात ही नहीं करना है, अजघन्य है, किसी विशिष्ट कषाय में आया है और वो मरण की अपेक्षा भी उसका कषाय चेंज हो सकता है या अन्य कारण से भी हो सकते हैं, कषायों का तो परिवर्तन हो सकता है, तो किसी विशिष्ट कषाय में आया है, अभी लोभ में आया है और मरकर नरक में गया तो वहां अन्य कषाय का उदय शुरू हो जाएगा, क्रोध का शुरू होगा, इस तरह से ले सकते हैं, एक समय वैसे घटित होगा। कषाय रहित जीवों में, जैसे हमने वेद रहित मान माया लोभ भी क्षपक श्रेणी में अपना अपना उदय का अंतिम समय लेना, जघन्य अजघन्य, बाकी श्रेणी की जरूरत नहीं, बाकी सर्वत्र अजघन्य ही है। हाँ, तो कषाय पलटने से उसका एक समय घटित होगा, विशिष्ट कषाय में आया है और कषाय पलट गया है, वो उसके पलटने के कारण क्या हो सकता है, मरकर अन्य कषाय के साथ जन्मा। कषाय रहित जीवों में कषाय रहित होते हुए मोनी का जघन्य अनुभव किसके है?
हाँ,
दसवें के अंत में, क्या वो दसवां गुणस्थान कषाय रहित है, क्या लोभ सहित है?
कषाय रहित है ये।
हाँ, बारहवें के पहले समय मोनी की सत्ता ही नहीं है। हाँ, तो कषाय रहित में मोहनी की सत्ता,
ग्यारहवा
गुणस्थान
अंतर्मूर्ति हो जाएगा।
हाँ, अंतर्मूर्ति ना एक समय भी घटित होगा, मरा ही मरेगा ना। हाँ, तो देखो कषाय रहित अभी पढ़ रहे थे ना, कषाय रहित जीवों में अब मोहनी कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति। अब मेरा प्रश्न है, कषाय रहित जीवों में मोहनी की सत्ता किसके होती है? तो ग्यारहवें वाले की होती है, तो ग्यारहवें वाले में जघन्य किसको होगा? बोलो, ग्यारहवें गुणस्थान वालों में जघन्य किसके हो गया? हाँ, हम एक समय घटित करने को नहीं कह रहे, अनुभाग जघन्य किस? हाँ, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और दोबारा जो चढ़ के आया है उसके होगा।
और 21 की सत्ता वाला।
हाँ, 21 की सत्ता वाला ले।
नहीं,
शायिक समय दृष्टि, शायिक करते समय उसने जघन्य किया, फिर उपशम श्रेणी चढ़ा तभी जघन्य किया, जघन्य ने घटाया, और फिर दूसरी बार वो उपशम श्रेणी चढ़ के ग्यारहवें में आया है तब उसके जघन्य होगा। अब ऐसा जीव एक समय में मरेगा तो जघन्य काल एक समय हुआ, और नहीं मरेगा तो अंतर्मूर्त रहेगा, तो जघन्य का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त हो जाएगा। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो, कषाय रहित जीवों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का, ये जघन्य किसके होती है? तो हमने देखा ना, ये दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है, शायिक समय दृष्टि, जघन्य काल एक समय, ये मरण की अपेक्षा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यानी जघन्य किसने किया तो दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ा, इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग विभक्ति का भी काल जानना चाहिए। अब जो ये उपशम श्रेणी पहली बार ही चल रहा हो उसके अजघन्य ही होगा, अब वो अजघन्य का भी मिनिमम काल कितना? एक समय, क्योंकि एक समय में मरा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, पूरे अंतर्मूर्त ग्यारहवें का है, जितना है उतना वहां रहा। विशेषार्थ, चारों कषायों में मोह का जघन्य अनुभाग अपने अपने क्षय के अंतिम समय में होता है, अतः इनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा प्रत्येक कषाय का जघन्य काल एक समय, देखो कषाय का ही जघन्य काल एक समय कहा, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से, यानी कषाय शुरू होता है, पलटता है किसी कारणवश, मरकर कहीं अन्य भाव में अन्य कषाय का उदय होता है, उसकी अपेक्षा लेना यहाँ पर। इसलिए इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। उपशांत कषाय का भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अतः अकषायी जीवों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। जो जघन्य के साथ आया हुआ है जघन्य के साथ ही रहेगा, अजघन्य के साथ आया उसका अजघन्य ही रहेगा, ग्यारहवे में कोई क्रिया वगैरह नहीं होगी, इसलिए वो एक समय में आया मर गया तो एक समय के लिए रहा कषाय रहित जीवों में, ऐसा कहेंगे। ज्ञान की अपेक्षा मति अज्ञानी ये मिथ्या दृष्टि लिए, श्रुत अज्ञानियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, किसमें होगा?
एक
इंद्रिय में होगा या एक इंद्रिय में से अन्य मित्र जाने वाले के भी होगा? जघन्य अंतर्मूर्त तो होगा ना, उसका अंतर्मूर्त काल हो सकता है कि नहीं? एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय में आया, मति अज्ञानी का मति अज्ञानी रहा
तो एक इंद्रिय में नहीं घटित होगा?
नहीं, एक इंद्रिय में भी घटित होगा, कहीं भी रखो ना उसको,
तो मति अज्ञानी होगा, जो आता है वो भी मति अज्ञानी होगा, जाएगा वो भी मति अज्ञानी
होगा। हाँ, हमें तो जघन्य वाला चाहिए। जघन्य कौन करता है? तो अनुभाग कांडक करता है ना, वो एक इंद्रिय में संगी में से आता है तो उसके अनुभाग जघन्य हत समुत्पत्तिक होता है, उसके बाद उसने जघन्य में जघन्य किया
और अजघन्य हो जाएगा,
फिर अजघन्य किया, अजघन्य में से फिर जघन्य किया, तो अंतर्मूर्त रहेगा ही उसमें। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, क्योंकि हमने देखा था जघन्य करने वाले कौन है? सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त। अब वो जीव कोई सूक्ष्म जीव में रहता है, लब्धि अपर्याप्त तो हुआ, जघन्य किया, सूक्ष्म एकेंद्रिय में तो रहा, ये फिर लास्ट में जाके फिर उसे, यहाँ हमारे क्राइटेरिया तो एकेंद्रिय की नहीं है, हमारे क्राइटेरिया अज्ञानी की है। तो ये अजघन्य अनुभाग जो है उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है,
ये तो ऐसे नहीं ले सकते जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया और अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में और वापस सम्यक्त्व प्राप्त किया, अजघन्य के लिए,
अजघन्य के लिए हाँ, अजघन्य के लिए तो हो सकता है जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल जो असंख्यात लोक कहा है, समय समय से आने पर इमीडिएटली अजघन्य हो जाता है, मिथ्या दृष्टियों के लिए वो अजघन्य होगा।
हाँ,
क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में जो जघन्य है वो एक इंद्रियों में ही होता है, मिथ्या दृष्टियों का जो जघन्य है
वो
एक इंद्रियों में ही होता है,
तो कहीं पे भी
अजघन्य कहीं भी होगा। तो मति अज्ञानी का जघन्य काल लेना है, मति अज्ञान में रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, तो जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य है, तो सम्यक दृष्टि है वो अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया है, मिथ्यात्व का जघन्य काल लेना। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक
वो आगे देखा था, वो
ये जो जैसे हमने सूक्ष्म एकेंद्रीय के बिना, सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त के बिना अन्य में भटकने का काल लिया हमने यहाँ। विभंग ज्ञानियों में, अब ये तो एक इंद्रिय है ही नहीं है, पंचेंद्रिय है। विभंग ज्ञानियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, ये याद है किसके?
ये जो नवेक रेवेक वाला जो विभंग
श्रेणी चढ़ के उतरा है और नवे ग्रेविक में गया है,
उसका विभंग ज्ञान यही मिलता है, अवधि ज्ञान।
हाँ, वहाँ जाके उसने मिथ्यात्व प्राप्त किया है।
हाँ,
वहाँ मिथ्यात्व प्राप्त किया है उसने लास्ट में जाके अंतिम समय में, तो विभंग ज्ञान में एक समय के लिए रहा जघन्य के साथ। निकालो स्वामित्व, निकालो।
हाँ, यही है।
अठारह उन्नीस कषाय विभंग ज्ञानियों में किसके होता है, उसका उत्तर है 19 पेज पर।
दो बार
उपशम श्रेणी पर चढ़कर उससे नीचे उतरकर आगम के अनुसार विभंग ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात मरकर उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त करके विभंग ज्ञानी हो जाता है, उसके जघन्य अनुभाग होता है। वो किस पोजीशन पर वो मिथ्यात्व में आ गया, अंत में जाके आया, तब जाके विभंग ज्ञान के साथ एक समय रहेगा, क्योंकि पहले तो अवधि ज्ञान था उसका। नहीं समझे? पहले अगर मिथ्यात्व में लाते तो विभंग ज्ञान तो लंबे काल तक चलता, अंतर्मूर्त तक रहता ही, जब तक फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त नहीं करता। तो एक समय जो उसने घटित किया है, जघन्य काल, एक समय आयु के अंत में मिथ्यात्व में आया। वही तो नैवे ग्रेवेक में पूरा सम्यक दृष्टि रहा और अंतिम समय में विभंग ज्ञान हुआ उसका। और उत्कृष्ट काल, विभंग ज्ञानियों में उत्कृष्ट काल कुछ कम 31 सागर है। कुछ कम क्यों कहा? अपर्याप्त दशाओं में विभंग ज्ञान नहीं है, परंतु उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है ना, और
वो तो मिथ्यात्व में तो
और बाद में वो मिथ्यात्व में जाकर नहीं, वहां जाके वो मिथ्यात्व में लाना उसको।
पहले समय आता
वहां जाके उसको मिथ्यात्व में लाना, क्यों? नीचे का मिथ्या दृष्टि अधिक भी अनुभव करे ना, वहां जाने वाला तो कम करेगा, तो पर्याप्त होने पर इसलिए कुछ कम कर देना उसमें से, कुछ कम 31 सागर, यानी वो शुरू में विभंग ज्ञान में आ गया है वहां जाने के पश्चात, जघन्य किया यहाँ पर और फिर वहां उत्पन्न हुआ है। तो हमने देखा था ना, ग्रेवेकों में तो अनुभव बढ़ाकर नहीं बांधना है, कमी होगा, परंतु वहां अभी वो मिथ्यात्व में चला गया है, तो उसका जितना जघन्य किया था उसने पहले, उतना ही रहा उसका।
ये तो अजघन्य की बात है ना, तो उसपे जघन्य की तो कोई बात ही नहीं है।
विभंग ज्ञानियों में जघन्य का उत्कृष्ट काल हम पढ़े, हमने अभी अजघन्य को पढ़ा ही नहीं है। जघन्य का उत्कृष्ट काल देख रहे हैं, विभंग ज्ञानियों में जघन्य का उत्कृष्ट काल, विभंग ज्ञानियों में जघन्य का, जघन्य काल एक समय कैसा लिया, वो दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़ के वहां आया है और आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त किया है, तो एक समय के लिए विभंग ज्ञानी भी हुआ और उसके जघन्य अनुभाग तो जो चला आया था वही रहेगा, वो कुछ बढ़ने वाला है ही नहीं वहां पर, इसलिए उसको लिया। उत्कृष्ट काल लेना है तो वही दो बार उपशम श्रेणी चढ़कर ग्रेवेक में आया है और वहां जाने के पश्चात वह मिथ्या दृष्टि हुआ, मिथ्या दृष्टि होते ही विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो 31 सागर तक जितना उसने घटाया है उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ने वाला वहां नहीं है। हेलमेटी बात अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर हैं। विभंग ज्ञानियों में अभी ये 33 सागर कहाँ के लेना?
नरक
के लेना है। कुछ कम क्यों कहा?
अपर्याप्त
दशा में विभंग ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, पर्याप्त होने पर होता है। और अजघन्य का जघन्य काल एक समय,
सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होगा, एक समय में मरण हो जाए।
अजघन्य था ही पहले से, सम्यक दृष्टि था और मिथ्यात्व में आकर
एक समय
के लिए विभंग ज्ञान हुआ। अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब ये जो दसवें गुण स्थान में है वो सारे ये तीन ज्ञान के धारी तो हो गए, मति शुद्ध तो होगा ही होगा, अवधि ज्ञानी भी वहां हो गए तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि कोई सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसका वो जघन्य दसवें गुण स्थान वाला तो नहीं है तो उसके अजघन्य है। तो अर्लीएस्ट कब जघन्य हो जाएगा ऐसा भी ले सकते, अभी निबोधिक ज्ञानी है ना, अभी अजघन्य है, अभी उसके मार्गणा ही पलट गई, यानी वो मति अज्ञानी हो गया तो भी अंतर्मूर्त घटित होगा, या अभी निबोधिक ज्ञानी हो गए हैं और उन्होंने क्षपणा कर दी, दसवें पहुंच गए जघन्य हो गए तो भी अजघन्य पलट गया। और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर है, कुछ अधिक में क्या लेना, अजघन्य का हाँ अजघन्य चाहिए, अभिनिबोधि ज्ञानी है ना,
अभिनिबोधि दर्शन और के सपना के और पीछे लास्ट में
अभिनिबोधिक रहते हुए उत्कृष्ट काल लेना है। अभिनिबोधिक ज्ञानी है जो दसवें में नहीं वो सारे उसका अजघन्य ही है, तो अभी हमें सम्यक दर्शन होने पर
वेदक सम्यक्त्व के साथ उत्कृष्ट काल रखकर
उत्कृष्ट काल रखना है,
और सपना करके अंतिम समय में मोक्ष करे।
अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त वो तो हम देख चुके, और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 सागर है, तो उपशम सम्यक तो में भी रखना, फिर वेदक में गया, फिर क्षायिक भी हुआ,
और पीछे
फिर वो क्षपक श्रेणी चढ़ी, हाँ तो कुछ अधिक 66 सागर होगा। मन परे ज्ञानियों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, वो दसवें गुण स्थान में। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में ही मन परिज्ञानी हो गए और उन्होंने क्षपणा कर दी, और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। मन परे ज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट काल लिया यहाँ पर। विशेषार्थ, दोनों अज्ञानों में एक बार जघन्य या अजघन्य अनुभाग होने पर वह कम से कम अंतर्मूर्त अवश्य रहता है। इसी से मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। इनमें अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण जिस प्रकार एकेंद्रियों में घटित करके बतलाए हैं, वैसे ही यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। जो मनुष्य जघन्य अनुभाग को करके अनंतर नीचे उतरकर यथाविधि एक समय तक विभंग ज्ञान में जघन्य अनुभाग के साथ रहकर अजघन्य अनुभाग कर लेता है, उसके विभंग ज्ञान में जघन्य अनुभाग एक समय तक उपलब्ध होता है, इसलिए विभंग ज्ञान में जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय कहा है। यानी मनुष्य में रहते हुए भी उसको हो सकता है विभंग ज्ञान प्राप्त हो, तथा जो जघन्य अनुभाग के साथ उपरिम ग्रहवेग नव ग्रहवेग में उत्पन्न होता है, उसके विभंग ज्ञान में कुछ कम 31 सागर काल तक जघन्य अनुभाग देखा जाता है, इसलिए इसका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इसमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है, अभी हमने चर्चा की थी ना ऊपर। मात्र अजघन्य अनुभाग का यह एक समय काल यथा शास्त्र घटित करना चाहिए, ऊपर भी हमने देखा था विभंग ज्ञानियों में ये यथाशास्त्र घटित करना। आभि निबोधिक आदि चार ज्ञानों में क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान संभव होने से इनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यही रुकते भी हम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। प्रेरणा में